राइवलरी के रूप में। राधा जी कहते हैं कि मैं सबसे अधिक कृष्ण की सेवा करूं, चंद्र रावण कहते हैं मैं तुमसे अधिक करूंगी। इस तरह से दोनों में उत्कर्ष होता है, दोनों मिलकर के कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। कौन कृष्ण को सबसे अधिक कैसे सुखी कर सकूं, यह है सेवा। इस चीज का आप लोग एक आश्रय के अनुगत्य में विषय जो कृष्ण और राधा जी हैं इनकी सेवा में उत्साहपूर्वक करें और उसका प्रचार करें। बतलाओ तो अंत संत लिखा है इसमें, ये तो सीधा एकदम मार्ग उन्होंने दिखलाया है, किंतु ये लोग पढ़ते नहीं है, न जानते हैं न सुनते हैं, बस एक ही चीज पढ़ेंगे बस जो उनको उनके पास, और दूसरा किसी का ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। इसलिए कहते हैं कि देखिए लाखों विपत्ति आएगी तो घर में रह करके हम विपत्ति सह सकते हैं, तो प्रभुपाद जी की गुरु की सेवा में रह करके हम क्यों नहीं विपत्ति सहेंगे राधा कृष्ण की सेवा करने के लिए। लाख विपत्ति आए, लाख अपमानित होना पड़े, करोड़ करोड़ लांछनाएं गंजनाएं अपमान इत्यादि हो, किंतु कृष्ण भजन मत छोड़िए किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में भजन नहीं छोड़ना है। संसार सारा छोड़ दे हमें तभी कृष्ण का भजन मैं करूँगा, छोड़ दे तब कृष्ण उसके लिए उत्तर आते हैं, गुरु उनके लिए उत्तर आते हैं। जगत के अधिकांश लोग कृष्ण की कृपा को ग्रहण नहीं कर पाते, इसलिए निरसाहत मत हुए। मैं इनसे प्रचार करने के लिए गया कि कृष्ण नाम को उन्हें जाओ जाओ उत्साहित होंगे, निरुत्साहित मत होइए कि मैं गया इतना प्रचार करने कोई भी बात हमारी नहीं सुनी। अरे करोड़ों लोगों में से केवल एक व्यक्ति भी आपकी बात सुना तो आपका प्रचार सफल, एक आदमी भी करोड़ों में से एक आदमी भगवान का भजन कर सके तभी वो मिशन सफल है। इसमें नहीं आएंगे, अभी एक बॉम्बे से खूब सुंदर कोई तारका यदि आ जाए ना, तो कोई तारका आ जाए यहाँ सिनेमा वाली एक्ट्रेस, बिना निमंत्रण दिए हुए लाखों कारें लाखों आदमी उपस्थित हो गए, भीड़ में पुलिस 10-50 पुलिस आना आएगा जो भीड़ को संभालने के लिए, और यहाँ पर बुलाए देने पर भी कोई नहीं है। इसलिए करोड़ों में से एक आदमी भी यदि भगवान का नाम लिया और इस तरफ में मुड़ गया तो समझो कि हमारा मिशन सफल हो गया, हमारा प्रचार ये ठीक हो गया। इसलिए कभी कभी बात तो उत्साह हो जाते हैं, हम लोग निस्साह हो जाते हैं, क्यों भाई कोई भक्ति की बात नहीं सुनी, नहीं एक आदमी सुना तभी। इसलिए इसके लिए त्रिनादपि सुने चेना तरोरपि सहस्रना अमानी अमान देना कृतनीय सदा। भाई तीन की अपेक्षा दिन दिन बन करके भगवान का भजन करो। एक बात और समझो, हम लोगों का शरीर ये जरदगांव है, जरदगांव माने क्या, एक आदमी जैसे बूढ़ा बैल हो जाता है ना, बूढ़ा बैल चल नहीं पाता, उसके गोबर पूंछ में लग जाते हैं, उठ भी नहीं पा रहा, जी बाहर कर देता है फिर निकल गया, अब वो मरने वाला है, बिजली चली गई,
एक घंटा हो गया इसलिए बिजली चली गई,
अरे ठहर जाओ। अब वो किसी काम का नहीं रहा बूढ़ा बैल, वैसे हमारा शरीर मान ले जरदगल हो गया, सड़गल भी गया, और उसमें उसमें भी यदि हम कह दें हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, उसका जीवन सफल हो गया। जामिन का तो ऐसा ही हो गया था ना, बस नारायण नाम कहा उसको मुक्ति हो गया। इसलिए हम जैसे भी हो इस शरीर का मूल उद्देश्य क्या है, भगवत भजन, इसको ठीक रखें। संसार में बहुत सी विपत्तियां हैं, ये बात ठीक है, बहुत विपत्तियां हैं, बहुत से अभाव, अभाव माने क्या, अभाव समझते हैं हिंदी में, कमी, रुपये की कमी, धन की कमी, बेटे की कमी, घर की कमी, बहुत तरह की कमियां हैं, और तरह तरह के रोग हैं, झगड़े भी हैं इस संसार में, किंतु सारा जीवन इसी के पूरा करने में ही लगा देंगे ये बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य नहीं है। ये तो समुद्र की लहरों की भांति कमी और ये रोग और ये सब चीजें समस्याएं आती रहेंगी, ये कभी बंद नहीं होने को। इसलिए इस संसार में आकर के दिन रात उस कमी को पूरा करने के लिए आज कोई काम किया उसमें बैंक में कुछ फेल हो गया, वो काम नहीं चला, और बस दिन रात उसी के पचड़ में लगे। ऐसा नहीं, इस जगत में आकर के ये सोचिए हमारा क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसको ठीक कर लेंगे। केवल उन कमियों को पूरा करने के लिए, रोग को दूर करने में, संसार के झगड़ों को दूर करने में, बस इसी में सारा जीवन को मत लगाइए, किस चीज में लगाइए। ये जो कोई इन सब को दूर करने के लिए, अरे मत लगाओ, हमारा नित्य जीवन क्या होगा, हमारे नित्य जीवन का क्या लक्ष्य है। अब ये शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में प्रवेश करके हम शुकर में, कभी गधे के, कभी ऊंट के, कभी और भी घृणित सुअर के जन्म भी हो सकते हैं, कभी देवताओं के जन्म होगा, ये मत इसके मत जाओ, ये तो होगा ही। इसलिए ये सोचो ये इनको दूर करने के बाद में हमारा जीवन का लक्ष्य क्या होगा, जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या है, जीवात्मा हमारी सुखी शांति से रहे, आनंदमय हो। कैसे आनंदमय होगी, कृष्ण की सेवा करने के अतिरिक्त, भगवान का भजन चरण के अतिरिक्त और कोई भी चीज नहीं है जिससे कि नित्य आनंद हो। यदि कोई सुखी शांति रहना चाहता है क्या करना चाहिए, आनंद की खोज में कृष्ण का भजन करो, और सब काम रह गए तो भी कोई बात नहीं, हो गए तो भी कोई बात नहीं, यदि कृष्ण का भजन हो गया सब कुछ। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य रखो जी, हम अपने कृष्ण के भजन को कैसे हम उन्नत करें। ये करोड़ों करोड़ों में से कोई एक व्यक्ति दो व्यक्ति कर सकता है, सबके लिए संभव नहीं है, इसलिए थोड़े से भी व्यक्ति करते हैं। एक माया के कारागार से, ये ब्रह्मांड कारागार है, एक कैदी को भी हम यदि छुड़ा लेते हैं, जेल से बाहर कर लेते हैं, तो जीवन सार्थक उसका हो जाएगा, ऐसा समझ करके हमको चलिए। दूसरी तरफ में इधर नहीं देखना है, इधर नहीं देखना है, ना किसी में हमको ये उद्देश्य को लेकर के चलना है। यदि सब तरफ प्रकार से फेल भी हो गए, सब प्रकार से फेल हो गए जीवन में, किंतु कृष्ण का भजन हो गया तो उसका जीवन सफल। ये सबरी का जीवन कैसा था, धनी थी, उच्च कुल में जन्म लिया, रुपए पैसे तो खूब थी ना, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग उसको आदर करते थे,
लिखी पढ़ी
आश्रम से निकाल दिया, लिखी पढ़ी तो खूब थी, खूब सुंदरी थी ना, कैसी थी, काली कुल्लू थी, भिल नहीं जाती थी, और केवल बस भगवान का राम का भजन ऐसा किया कि बड़े बड़े ज्ञानी और सब लोगों के पास भी भगवान नहीं जा करके उसके घर में गए एकदम सीधे और उसका जूठा देर खाया, जीवन सफल हो गया। और नहीं तो जन्म मन के चक्कर में पड़ती हुई अभी तक घूमती रहती। इसलिए कहते हैं संसार में बहुत से आकर्षण की वस्तुएं हैं, कुछ ऐसी हैं जिससे जीवन हमको सुखी नहीं लगता है, तो वो विकर्षण की भी वस्तु है, अर्थात कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जैसे हमारे लिए सुखदाई हैं। जैसे हमारे लिए कोई एक सुंदर घर बना दिया, एक सुंदर पति के साथ में हमारी शादी करा दी उच्च कुल में, या सुंदर लड़की के साथ में शादी करा दी, हमारी नौकरी की व्यवस्था करा दी, हजारों रुपयों का इनकम करा दिया, तो वो हमारे लिए कैसा हुआ, अनुकूल है, वो सुख देता है। और एक आदमी हमारे विरुद्ध लगा रहता है तो ये क्या हुआ, इसके तरफ में अधिक मत दौड़ो। हमारे लिए विकर्षण की चीजें वो हैं, यदि हरि भजन में बाधा है तो उसको छोड़ने योग्य है, और हरि भजन के अनुकूल है तो वो ग्रहण कर लो। ऐसी चीजें जो हरि भजन के अनुकूल हो उसको ग्रहण करो, और प्रतिन चीजों को विदु दुर्योधन को और दुर्योधन के राज्य को छोड़ दिया। उन्होंने कहा था जैसे ये बड़ा कुमार्गी है, बदमाश, तुम्हारे कुल को ध्वंस करा देगा, विदुर नहीं माने, धृतराष्ट्र नहीं माने, और दुर्योधन इसीलिए उनका विरोधी हो गया। उन्होंने कहा जैसे लो ये धनुष लो, बाण लो, पद लो, गरिमा लो, मंत्री मुख्यमंत्री का ये पद ले लो, अब मैं चला छोड़ करके चले गए। अनुकूल चीजों, पांडवों के प्रति सब समय उनकी प्रीति रही, इसलिए अनुकूल चीजों को ग्रहण करना, चाहे वो खाना हो, चाहे पहनना हो, चाहे घर हो, चाहे और कोई चीज हो, मित्रता उसी से करो, बंधुत्व जो कृष्ण भक्ति के अनुकूल है, इस तरह से हमारा जीवन ऊपर बढ़ेगा। इस जगत में हमारा किसी के प्रति अनुराग नहीं है, कहते हैं प्रभुपाद जी, और किसी के प्रति विराग भी नहीं है, तटस्थ हैं। इस जगत में सभी जितने भी बंदोबस्त हैं, चिरस्थाई व्यवस्था याद है आप लोगों को,
परमानेंट सेटलमेंट,
परमानेंट सेटलमेंट और द टाइम ऑफ हेस्टिंग्स या क्लाइव था,
क्लाइव
में था परमानेंट सेटलमेंट, जमीनों का ये सब देते थे। परमानेंट सेटलमेंट कहाँ है, है? वो एक दिन बना फिर बिगड़ गया, इसलिए ये मत सोचे ऐसा घर बनाऊंगा जो जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक रहेगा, ऐसा मत करो। परमानेंट व्यवस्था मत करने जाओ, परमानेंट व्यवस्था उसको करो, हमारी भक्ति परमानेंट कैसे होगी, और कुछ में मत जाओ, जीवन बिगड़ जाएगा, बिखर जाएगा। आप लोग एक उद्देश्य क्या, राधा कृष्ण की प्रीति, अन्य अभिलाषिता शून्य ज्ञान परमात्म अनुकूलेन कृष्णा अनुशीलनम भक्ति रूपम, बस एक कृष्ण के, कृष्ण की प्रीति के लिए जितने हम तन से मन से वचन करेंगे, काम करेंगे, सब समस्त इंद्रियों के द्वारा कृष्ण की सेवा, ये चिरस्थाई है। और बाकी सब क्या है, जितने बंदोबस्त हैं एक दिन के लिए दो दिन के लिए, वो चिरस्थाई नहीं हो सकते हैं, जितना भी परमानेंट सेटलमेंट करो। इसलिए एक तान से, एक अनन्य भाव से भगवान का भजन करें, जीवन निर्वाह के लिए जो आवश्यक है उसको ग्रहण करें, उसमें भी अनुकूल व्यवसाय करें जो हमारे अनुकूल हो, भजन करें, पत्नी आए घर में भजन के अनुकूल, पति ऐसा मिले भजन के अनुकूल, बंधु हमारा हो, सखा हो, वैसे सभी विषयों को अनुकूल समझ। इस तरह से उनकी ये सब अंतिम ये दिन की शिक्षा जगत के लोगों के लिए, और उनकी जो विशेष शिक्षाएं हैं, शाम को हम लोग 4:30 बजे से जब आरंभ करेंगे, बहुत अमूल्य उपदेश हैं ये सब, इसलिए आप लोग अंततः सुनेंगे तो कभी कभी तो याद तो रहेगी, उस पर थोड़ा सा चलेंगे, ये है हमारा रूपानुगधारा, इसमें हम लोग चलें, लाख लोग कहें इसे हम लोगों को दूसरी तरफ में नहीं देखना है, शुद्ध भक्ति की तरफ में चले। हमारे बाप ने एक कुआं बनाया, उसमें कीड़े पड़ गया, इसलिए उसी कुआं का पानी पिया, मर जाऊंगा वही पीऊंगा, ऐसा मत करो। कुआं खराब हो गया तो उसको ठीक से बना करके उसको पानी रिफाइंड करते हैं और तब पियो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाए। तो आज यहीं तक रहे, अभी हम लोग उनके चरणों में पुष्पांजलि देंगे और आरती करके उत्सव हम लोग समाप्त करेंगे आज की इस समय, और प्रसाद की व्यवस्था यही है,
जय
अनंत कोटि वैष्णव बृंद की
जय,
रूपान गुरु वर्ग की जय,
पूरे
भक्त बृंद की
जय,
व्यास पूजा की जय,
जय
श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास की जय,
जय
सुखदेव गोस्वामी की
जय,
गुरु परंपरा की
जय,
हरिनाम संकीर्तन
जय, प्रेमानंदे हरि हरि बोल।
हवा भरी हुई है, उस हवा को निकालना है, कैसे निकालेंगे बताइए, भरना होगा उसमें, हम पानी भर दें, जितना हवा था वो निकल गया अपने आप, उसके लिए कोई चेष्टा नहीं करनी, निकल गया उसी प्रकार से भक्ति हृदय में जितनी आती जाएगी, अलग नहीं उतने परिमाण में, अनायास भाव से, सरल भाव से निकल, इससे पहले भक्ति आएगी। एक दुष्ट आदमी है, अनाचारी दुचारी है, जहाँ वो भगवान का नाम लेना आरंभ किया, कुछ भक्ति उसके हृदय में आने लगी, उसके कुचार उतने ही परिमाण में, और पहले मन को निश्चिंत करके, विधान अनर्थों को दूर करके, अपने बुराइयों को दूर करके तब भक्ति करेंगे, तो कोटि कोटि जन्म लग जाएगा अपने को वैसा तैयार करने भक्ति दूर, अरे समझ में ऐसा भक्ति जितनी उसके अंदर में प्रवेश करेगी, अनर्थ अपने आप दूर, पानी जितना ही उसमें भरता जाएगा है तो हम दूर होता जाएगा, पहले हम अनर्थ को दूर कर लें तो भक्ति कर लें, ये कोई छोटी जन्म नहीं मिली, जगाई मधाई पहले ठीक हो गए तब भक्ति नहीं मिली, नित्यानंद प्रभु महाप्रभु जी ने उसके सिर पर हाथ रखे आलिंगन किया, जहाँ प्रेम प्रवेश हुआ, कृष्ण कृष्ण कहा, वो लक्ष्मी जी का ऐसा ही अजामिल का ऐसा ही बद्ध अवस्था में दुराचारी रहते हुए भी भगवान का नाम नारायण नारायण करना,
बिल्ला मंगल जी
सभी का ऐसा कोई जगत में पैदा नहीं हुआ जो पहले चित्त को सिद्ध करने तब फिर भगवान नाम करते, ये गलत बात, ये सिद्धांत ठीक नहीं है। जो जहाँ पर जिस स्थिति में है वहीं से भक्ति आरंभ करे और अनर्थ दूर होते चले जाएंगे, चित्त सिद्ध होता जाएगा, प्रेम बढ़ता ये तरीका।
स्नान करते
हैं तो कुछ लोग ये कहते हैं कि पहली क्लास पढ़ेंगे फिर दूसरी पढ़ेंगे फिर तीसरी पढ़ेंगे, पहले गीता पढ़ेंगे फिर भागवतम के सेट पढ़ेंगे पूरे सेट पढ़ के फिर उसके बाद।
अच्छा ये तो ठीक है मान मान, किंतु पहले जन्म में उसने ये सब कर लिया है ना, जैसे हरिदास ठाकुर का नाम के प्रति ये उन्होंने पहली दूसरी पढ़ा ना कि नाम में ऐसे अभिनिष्ठ हो ये जगत के गुरु बना दिया महाप्रभु जी ने। अब हमारे पहले जन्म का संस्कार का वो जानते हैं ये क्या था, इसके बाद में हमारा ये आरंभ हुआ है इसलिए हमको फिर ABCD पढ़ना पड़ेगा, आखिर यहाँ से समाप्त हुआ है वहाँ उसके बाद से चलेंगे। गीता में यह कहा गया, क्या कहा गया,
सूचनांग सुमतांगे जगत भ्रष्ट हो जायते,
उसका कभी विनाश नहीं होता,
न्याहारी क्रमनाशवस्ती प्रत्यवायन विद्यते,
उसके बाद में सूचनांग सुमतांग हमें क्योंकि वहाँ जहाँ था वहाँ सब ऊपर आरंभ करता है, इसका निर्णय कौन करेगा, मूर्ख करेगा, कौन करेगा, साधारण आदमी नहीं करेगा, ये कहने वाले कृष्ण हैं वो विचार करके कह रहे हैं, ऐसे उत्तम भागवत कोई हो तो ये विचार कर सकता है जो पहले जन्म का करता है, उसके लेने का जो कपड़ा फिर पढ़ कर दिया हो, ये तो नित्य चीज है, इसका तात्कालिक केवल विचार नहीं है, इसे सबको वहीं से आरम्भ करना होगा। ये बात
हर जन्म में कहेगा, हर जन्म में भी पूरा नहीं हो पाया
फिर वही नीचे से आरम्भ कर, फिर आ जाओ फिर आरम्भ करो, तो ये नित्य भक्ति हुई नहीं। रूप गोस्वामी को कहोगे तुम पहले गीता का भाष्य नहीं लिख करके उज्जल नीलमणि क्यों लिखा, ये कोई बात है, चूक है इसमें,
ये फिर कुछ लोग इसको कर्म चोरी के साथ जोड़ देते हैं, कुछ वो इसका उसका मायावादी ही कहा जाएगा अब उनको,
वो भी हमारे विचारों में उनको विश्वास नहीं और उनको अच्छा संग नहीं मिला, या अच्छा संग मिलने पर भी उसको वो ग्रहण नहीं कर सकते।
वो हमें ये चीज़ का उदाहरण दे देते हैं कि एक टाइम में एक समय में 3:33 पर एक बच्चा टाटा के घर पैदा हुआ और एक बच्चा मजदूर के घर पैदा हुआ, उनके कर्म दोनों के एक जैसे क्यों नहीं थे, इसका उदाहरण देते हैं।
तो क्या हुआ इसे, इसे तो ये ठीक हुआ, ये जो घर में जो उत्पन्न हुआ धनी घर में उसका पूर्व जन्म का संस्कार था, तो इसीलिए जो उन्नत अधिकार में आने वाले भक्त हैं उनका पूर्व जन्म का संस्कार था, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ें दूसरी वस्तु के लिए दे रहे हैं किंतु दूसरी वस्तु को नहीं दे।
तुम्हारे अगर मान लो सपोज करो मैं पिछले जन्म में एक कुत्ता बिल्ली चूहा कुछ भी कीड़ा कुछ भी था, तो क्या अब जैसे मैं आपके चरणों में आ गया क्या पूर्व संस्कार था,
पूर्व जन्म का संस्कार भी, अब मनुष्य को नए कर्मों में अधिकार है दोनों चीज, यदि महाप्रभु का संग या रूप गोस्वामी का या हरिदास ठाकुर का संग मिला है अपने समय से आपका कोटि जन्मों से एक कर्म कहाँ बढ़ा करके ऊपर लेकर के चले, एक यहाँ पर धूल है मिट्टी में पड़ी हुई, यदि हवा के झोंके आए और उसे उठा करके एकदम आकाश में पहुँचा दिया ये नहीं हो सकता, कृष्ण संघ की तो महिमा है ना, जा सकता है, इससे पुराना संस्कार और आधुनिक संस्कार ये दोनों मिलकर होते हैं, केवल एक ही को पकड़ करके रखने से काम नहीं चलता।
कृष्णाय कृष्णभक्ताय
कुछ शास्त्रों की व्याख्याएं चल रही थी, इस बीच में इधर उधर जाने से बंबई और पूरी और सबसे तो सब अस्त व्यस्त हो गए। विष्णुप्रिया जी का जीवन चरित्र वहाँ पर पत्र में कुछ लिखना लाया, आज मैं प्रवचन करने के लिए प्रस्तुत नहीं था, अभी सोचा जब घर में रहेंगे तो और अधिक लोगों से बोलना पड़ेगा, यहाँ आकर के थोड़ा सा विश्राम करूँगा। ये मैं सोचता हूँ कि अब कल से उनका कुछ गृह भगवता में क्या कहाँ चल रहा है, कहाँ चल रहा है
सत्संग की महिमा। लेकिन
अभी आरंभ कर दिया था, फिर से अभी आरंभ किया तो उसको देखूंगा, तो मैं उसी को करूँगा। सनातन गोस्वामी की टीका का देखेंगे, हमें तब तो 5-7 दिन तो 10 दिन है
चैतन्य
चैतन्य चैतन्य का, तो वो प्रसंग खत्म हो गया ना, उसके बाद और कुछ ठीक है। तो चैतन्य चैतामृत का ही कल से देखेंगे, कर लेंगे जब आएंगे तब, फिर बृहद भगवतामृत का
19 परिच्छेद एक बार पूछ लेन करे छिड़ दिए हैं अंतलीला 19 परिच्छेद।
और महाप्रभु जी का भाव कौन देखेंगे, किस लिए आए, क्या किया वो। आज हम लोग भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी जगत में आए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जगत में आए, क्या हो गया कुछ ठीक नहीं कर सकता। किसी विशेष उद्देश्य से आए, बहुत प्रतिभाशाली आचार्य थे, यदि उनका भी भाव नहीं होता तो आज विश्व में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्रेम था, नाम संकीर्तन, गीता भागवत का प्रचार, और हम लोग जो इधर में आ रहे हैं ये सब कुछ नहीं। यदि प्रभुपाद नहीं आते तो प्राचीन धारा के अनुसार में लोग मनमानी तरह से अपनी भजन करते चले जाते, किसी को पता ही नहीं था कि महापुरुष किस लिए है। और प्रभुपाद जी भक्ति विनोद ठाकुर के साथ अंतिम धर्म है, प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत भक्ति प्रश्न विनोद ठाकुर जी ने उसका आठ कर दिया, सूत्रपाद किया। बल्कि आधुनिक जगत में शुद्ध भक्ति के धारा को प्रवाहित करने के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी का सबसे पहला प्रयास, कोई भी काम करने के लिए इच्छा और कुछ करने के लिए मन में कुछ भावनाएं उठती हैं, उसी को भी मान लिया, फिर मन ही मन में उस चीज को पैसा पूरा करने कुछ देखिए संकल्प करता है, फिर उसका एक स्थूल रूप साधारण रूप में उसको खड़ा करता है और अंत में उसी को रूप दे देता है, वो विशाल वस्तु चिंतन है, चाहे भवन हो मंदिर हो चाहे इस विषय में हो, ऐसे ही मन में वो संकल्प होता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा शुद्ध भक्ति की धारा जो महाप्रभु से आ रही थी, रूप को शामिल कर रहा है, इसके बाद में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, इसके बाद में धीरे धीरे बोले करीब 150-200 वर्ष तक अंधकार भी है वो वर्ष जदा कदा कहीं कहीं लोग भजन करते थे, उनमें कुछ ऐसी प्रथाएं आ गई जैसे वेश आश्रय मूर्ख एकदम जाहिर, उनको विश्वास और श्रद्धा भी नहीं है और उसको भी क्या कहते हैं
गोपी भाव विश्वास्व बाबा जी
बेस तो चला गया, बेस भेक हो गया, भेक माने बैंक मैडम,
भेक माने
भेक माने होता है मैडम
मैडम
वो धीरे धीरे वैसे ही चीजें हो गई, असल चीजें लुप्त हो गई, कोई आए और बस उसको एक दे दिया जाओ भजन करो, और वो परकीय भाव के बदले में परकीय काम युक्त भावना खुले एकदम भक्ति राज भक्ति कल्याण ठाकुर को बहुत शिक्षित समाज में गोड़िया लोग अपने को कहने वाले मुख नहीं दिखा पाए, इसलिए भक्ति मनोहर ठाकुर जी पहले आरंभ किया। इसलिए भक्ति भगीरथ के भागीरथी के पुनः प्रवर्तक वे अष्टम गोस्वामी माने जाते,
सप्तम सप्तम
सप्तम छह गोस्वामी होते आइए सब, और उसके बीच में किसी को नहीं कहा। जी गोस्वामी के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी के बाद में हित बहुत आए, कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी आए, उसके बाद में गौतम ठाकुर आए, श्रीवास आचार्य सब आए, भक्ति मनोहर ठाकुर को ही सप्तम गोस्वामी सब लोगों ने मिलकर के स्वीकार किया। इतना विशाल साहित्य उन्होंने सृजन किया, उनका मूल उद्देश्य क्या था उसको स्थापन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी ने प्रयास, उनका भी जीवन ऐसे ही कामों में चला गया जिसको कहते हैं भक्ति समाज को संस्कार करने में लगते, अधिकांश ये भक्ति नहीं है जिसको वो भक्ति कहते हैं साधारण, बस इसी के संस्कार उनका सारा संचार। यदि स्वामी जी का ये भक्ति विधान स्वामी जी उनके उन्होंने मंदिर भी कुछ बनाए, और मंदिर बनाना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और यही प्रेमा भक्ति है, यदि समझ लिया जाए तो उनको समझना पूर्ण हमारे गोस्वामियों के हमारे गुरु परंपरा का यही मुख्य देन है। चैतन्य महाप्रभु जिस प्रेम को जगत में प्रकाश कर देते हैं, बीच बीच में सामाजिक लोगों के द्वारा वो चीजें रूप जाती है, प्रभुपाद जी उसी चीज को देना चाहते हैं, शुद्ध गेहूं हमको उपजाना है, खेत तो लेंगे ना उसकी सिंचाई करेंगे, उसमें उर्वरा शक्ति कुछ लगाएंगे, खाद इत्यादि देकर एकदम ठीक ठाक हो जाएगा अपने, अब फिर ये पैदावार दे सकता है अच्छा, तब उसमें पुष्ट बीज देंगे, तब उसमें फसल अधिक होगी और ठीक ठीक होगी। इसलिए प्रभुपाद का काम समाज संस्कार भक्ति संस्कार बड़ा संस्कार स्थापन ऊपर से यही उनका मुख्य रूप में देखा गया, किंतु मुख्य उद्देश्य नहीं था जंगल काट करके और खेत को बराबर करना या सिंचाई करना है, उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य क्या था, मूल पैदावार, मूल पैदावार क्या चीज है, शुद्ध भक्ति है, प्रेमा भक्ति। प्रभुपाद ने लिखा शुद्ध भक्ति किसको कहते हैं, प्रेम भक्ति, क्या रागा गुणा करा के अतिरिक्त और जो भक्ति है वो शुद्ध भक्ति है, शुद्ध भक्ति रागा गुणा भक्ति है। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने अपने देव धर्म में दिया है उदित विवेक अनुदित विवेक, उदित विवेक के लिए कोई भी नियम नहीं है, कोई उनके लिए विधि नहीं है, उनके लिए कोई निषेध नहीं है, स्वाभाविक अपने रुचि से स्वभावतः उनके प्रति लगते हैं, इसी को भक्त स्वामी सिंधु में जात प्रेम कहा गया। और जो अनुदित विवेक वाले हैं जिसको प्रेम नहीं है, अपनी निष्ठा भी उत्पन्न नहीं हुई है, उनके लिए ये वैध विधि के अनुसार में चलो, निषेध और विधि को पूर्ण रूप से मानो। आज तो ये प्रश्न ये स्थिति आ गई है, ऐसी परिस्थिति है कि ये जो भक्ति की जो विधियां हैं ये भी आजकल दूर हो गई, ये भी दूर हो गई, शुद्ध वो लाइन ही नहीं आ रही। श्रवण कीर्तन, श्रवण कीर्तन के लिए हो, श्रवण कीर्तन धन जन सम्मान और इसके लिए ना हो, श्रवण कीर्तन श्रवण हो किस लिए, श्रवण करने के, कृष्ण को प्रसन्न करने के, अपने में वो चीजों को लाने के लिए, तब तो वो श्रवण श्रवण है, और श्रवण किया नहीं और बस प्रचार करने नहीं, क्या प्रचार करें, शायद प्रश्न कुछ नहीं प्रश्न, इतने पहले उसकी अनुभूति होनी चाहिए, ऐसे भजन करके
जीवन सार्थक जीवन सार्थक करो गरी पर उपकार
पहले तो समझो अनुभूति करो और तब फिर दूसरों को वहां बदलाओ नहीं तो क्या बदलाए भक्ति के बाद ही उनको ही उस अंग समझ करके उसी का प्रचार करेगा और कुछ दिन के बाद में अपने भी छोड़ देगा आज जिसको कहा है वो भी छोड़ देगा ऐसे ही हो रहा है इसलिए प्रभुपाद को समझने के लिए उनके अंतरंगों भाव को समझना चाहिए जो चीज जो व्यक्ति उनके अंतरंग भावों को नहीं समझ पाते केवल बहिरंग भक्ति का ले देते हैं देखो मांस मदिरा मत खाना चार चीज ये आप करना बस यही प्रचार कर दीजिए क्या
दूतम
पानम स्त्रियम पानम स्त्री सुनना जत्रा धर्म चतुर्थिया जुआ मत खेलो अहिंसा मत हिंसा मत करो प्राणी मत स्त्रियों का संग मत करो और शराब इत्यादि ये सुनो अच्छा इसका प्रचार करके विश्व में हो इसे भक्ति होगी लाख आदमी करे
तो अद्वैतवादी लोग भी करते हैं
वो तो अद्वैतवादी लोग सतकर्मी ये सभी करते हैं ये बात ही नहीं है अरे यदि भक्ति के लिए इसको किया जा रहा है तब तो वहां तक तो कुछ अनुकूल है ये निषेधात्मक चीज है ये इसको देने के लिए महाप्रभु इसके लिए तो मध्वाचार्य रामानु विशेष रामानु जी इत्यादि आचार्य ये यथेष्ट है शंकराचार्य भी यथेष्ट है इसके वो महाप्रभु जी का मिशन ये प्रभुपाद से कहाँ तक संबंध रखता है इसमें प्रभुपाद जी का क्या वैशिष्ट है ये सब गंभीर रूप से हम लोग विचार करते हैं उसको ग्रहण करने की चेष्टा ये सब महापुरुष इसलिए आते हैं इस दृष्टिकोण से आप लोग विचार करते हैं प्रभुपाद जी के वैशिष्टों को संक्षेप में पांच पांच दस दस मिनट में आप लोग जरा बोलिए अंत में मैं कुछ थोड़ा सा उसको बतलाया था प्रभुपाद जी की अंतिम अभिलाषा इसमें बतलाया था मैंने प्रभुपाद जी ने यह कहा था बहुत से लोगों को मैंने देख दिया है अशुद्ध अशुद्ध जो परंपरा है उसके विरुद्ध हमने बहुत सी बातें कही और समाज के नए नए युवकों को मैंने उनको आमंत्रित कर अर्जुन के द्वारा विश्व में मैंने प्रचार करवाया इसलिए उनके माता पिता या लोग या सरजी या लोग या तथाकथित गोस्वामी लोग हमारे घर में बहुत बिगड़े किंतु एक न एक दिन वो समझेंगे ये हमारे कल्याण के लिए किया और वो ठीक कर देंगे दूसरी बात एक आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह की हम सेवा करें और उसके लिए अपने सारे मतभेदों को दूर करके सारे मतभेदों को दूर करके मिल जुलकर एक आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह की हम सेवा करें एक आश्रय का मतलब राधा जी आश्रय हैं और दूसरा आश्रय गुरु पर गुरु शुद्ध गुरुदेव हैं इनके आश्रय में हम लोग अपने सारे मतभेदों को भूल कर विषय विग्रह राधा और कृष्ण इनकी सेवा में हम संपूर्ण रूप से आत्मनियोग कर हम संसार में लकड़ी और मट्टी और पत्थर के कारीगर नहीं है होने आए हैं हम किस लिए आए हैं रूप गोस्वामी के चरणों की धूलि से अभिषिक्त हो सके ये हमारी अंतिम और आंतरिक हम इस संसार में आए हैं हमारे बहुत से इस संसार में जीवन निर्वाह में बहुत सी बाधाएं हैं हमारे अंदर बहुत से अभाव हैं बहुत सी बाधाएं हैं सारा जीवन उसी में हम उन अभावों की पूर्ति के लिए हम नहीं लगाएंगे हम इस जीव मनुष्य जीवन को पा करके ये रहेगा अनादि काल से होता आया है इस जगत पूर्ण रहेंगे अभाव रहेंगे विघ्न बाधाएं रहेंगी बहुत से अभाव है किंतु इस मनुष्य जीवन को लाभ करके सद्गुरु पदाश्रय करके हम उन उद्देश्यों को ठीक करें जो हमको क्या करना है क्या वो राधा कृष्ण रूपानु चरणों की धूलि से अभिषिक्त होकर के एक अश्य विग्रह के अनुगत में विषय विग्रह की सेवा। ये उद्देश्य ठीक हो जाने के बाद में काम सरल हो जाए, ये उद्देश्य ही नहीं होता है। उद्देश्य अभी हमारा है, हमें खाने पीने की असुविधा कमी है, रुपये की कमी है, भवन की कमी है, आधुनिक उपकरणों की, भोग्य उपकरणों की, किसी से शत्रुता है, किसी से लड़ाई झगड़ा मामला मुकदमा और तरह के रोग हैं, ये सब तरह की चीजें जिसी में हम लोग सारा जीवन को लगा देते हैं। ये समझने का और विचार करने का मौका नहीं मिलता हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। यदि यह लक्ष्य स्थिर हो जाए तो काम बहुत आसानी से साधन कर लेंगे। इसलिए उद्देश्य को स्थिर करने की जरूरत है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। अब वह लक्ष्य है रूपान रूप गोस्वामी के अनुगत्य में उनके निर्देश पर चल करके एक अश्य विग्रह के अनुगत्य में विषय दूसरी बात तीसरी बात उन्होंने कहा ये शरीर जरद्गव है, यह शरीर में कुष्ठ रोग हो जाए या कोई गंदी काक्ष, ये आजकल कैंसर की बीमारी है, कोढ़ हो जाए, लकवा मार दे, ये तो अंतिम, इसे तो अब तो कुछ है नहीं और मर जाएंगे। तो इस जरद्गव सड़े गले शरीर से भी सुस्त है तो कोई बात नहीं, उस शरीर को भी यदि भगवान अर्पण कर दिया कृष्ण को और उनकी सेवा के लिए संकल्प ले जो उसका एक धन बन गया, इसको भी अर्पण कर दे कृष्ण को, ये अर्पण करने योग्य नहीं है तभी अर्पण किया प्रभु, ये जो कुछ हमारा तन मन वचन धन बुद्धि वाक्य आत्मा आप
मानव सदेह हो गया जो कि मोर और बिंदु आपद नंद की
बस ये हो जाए रास्ता निकल जाए। इसलिए हमारा प्रयास केवल अपने भावों को दूर करने के लिए, रोगों को दूर करने के लिए, मुक्ति के लिए, स्वर्ग इत्यादि के लिए, ये संसारिक सुख वासनाओं को लेकर के करने के लिए नहीं, ये अंत में कहा। और उसके बाद तो उनके बहुत से उपदेश हैं जिनमें कोई पत्र कुछ ना हुआ। श्री छात्र महाप्रभु जी ने लिखा उसमें अंतिम लाइन है परम विजयते श्री कृष्ण शंकर चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावा, आठ श्लोक महाप्रभु जी ने अपने स्वयं ये प्रकाश किया और कुछ है कि नहीं अपने उनके लिखे हुए। एक था पहले वो किस चीज की कारिका लिख रहे थे, नब्बे अन्याय रघुनाथ के साथ में नौका में चले जा रहे थे
पानी में बह गए,
तो वो उन्होंने महाप्रभु का देख करके बड़े दुखी हो गए। क्यों दुखी हो गए? तो हमारी पुस्तक जो लिखा उसको कोई नहीं पूछेगा, इसीलिए बस लेकर के नहीं, इतना स्वार्थ त्याग करना मनुष्य के लिए संभव नहीं, ये भक्तों के लिए या उन्हीं के लिए संभव। तो उसके बाद में ये यही आठ श्लोक अपने निजी हैं और कुछ लोग आते हैं किंतु उसमें है या नहीं मालूम नहीं। एक प्रेम गंधोस्ती नाम दरा पिवे हरो, ये श्लोक आते हैं किंतु ये ईश्वर पूरी बात के समय से ही शायद चालू था या राधा जी का ये मूर्ति बात। तो उसमें जो परम विजय थे श्री कृष्ण नाम संकृत श्री कृष्ण संकीर्तन, यही गौड़ीय मठ का एकमात्र उपास्य है। इसी में राधा कृष्ण इत्यादि हरे कृष्ण चित्त को भी हरण करने वाली और कृष्ण राधा जी को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण, राधा के साथ में रमण करने वाले राम, इस रूप में चरम उपास्य, इसमें सब जितने श्रृंगार वस्तक सब इसी के अंदर में प्राप्त है, यही हमारा उपास्य है। विषय विग्रह कृष्ण ही एकमात्र भोगी है, इसके अतिरिक्त सभी उनके भोग्य हैं, कृष्ण के अतिरिक्त सभी उनके भोग्य हैं और एकमात्र भोक्ता कौन है? दूसरा कोई नहीं है, इसलिए हम अपने को भोक्ता अभिमान छोड़े, यही सबसे बड़ा ज्योतिष का भाव है। मैं भोग्य हूं कृष्ण का, मैं भी कृष्ण की मनोभिलाषा पूर्ण करने का एक मैं वस्तु मात्र हूं, कृष्ण एकमात्र भोक्ता है। हरिभजन कारी व्यतीत सकली निर्बोध और आत्मघाती, हरि जो भजन करता है भगवत भजन करता है उसका अतिरिक्त जितने व्यक्ति हैं वो सब आत्मघाती हैं, चाहे जितने प्रतिष्ठित जितने विद्वान जितने भी कर्मी ज्ञानी योगी सभी आत्मघाती मैंने अपनी हत्या करने वाले और निर्बोध मैंने मोट करने उनको कुछ चीज कर दिया। यदि संसार में आकर के सब कुछ कर लिया किंतु हरि भजन नहीं किया तो उसका जीवन बेकार गया, और जिसने कुछ भी नहीं किया भगवत भजन किया जैसे हरिदास ठाकुर कुछ किया जगत में, घर बनाया न विवाह शादी की न क्या किया न ग्रंथ लिखा न क्या किया उन्होंने, मंदिर बनाया न कुछ किया, बस एकमात्र हरि नाम किया। उनकी सहिष्णुता देखो, उनकी भक्ति देखो, महाप्रभु स्वयं आदर कर रहे हैं और उनको नमाचार्य का, इसलिए हरि भजन के अतिरिक्त जो कोई करते हैं जो अपने को बड़े मानते हैं वो निर्बोध और आत्मघाती मूर्ख। यदि मठ में वास करना है घर में बैठ करके भजन करना है निश्चिंत रूप में तो सज्ज करना मठवासियों का एक प्रधान कार्य है, सम करना सीखो, अस्थिर मिला मत जाओ, क्रोध मत करो, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मन के प्रतिकूल आएंगी, अधिकांश ऐसे ही होंगी किंतु उनसे कुछ लेना देना मत समझो यदि भजन करना चाहते हो, इसलिए मठवासियों का। और आजकल हो गया है क्या उल्टा, मठवासी लोग असहिष्णु हो गए, बल्कि गृहस्थ भक्तों में कुछ कुछ सहिष्णुता है, सब लोगों को आदर देते हैं और कुछ भी ऐसा आ जाता है तो उसको सह लेते हैं, किंतु मठवासियों में यही चीज़ क्यों, भक्ति तो है नहीं, ऊपर का वेशभूषा आ गया बस ऐसा, किसी को सम्मान देना नहीं चाहे, सहिष्णु नहीं है, थोड़ा सा कुछ हो गया ना बस, एक साधारण सी लौकिक चीज के लिए पारमार्थिक गुरु का प्रत्याग, भगवत भक्ति का ही प्रत्याग, वैष्णव का संग प्रत्याग कर देते हैं, इन्हें सत्य करना चाहे गृहस्थी हो चाहे आजकल इस चीज की कमी है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है, मैं अपने मन से भी कहता हूँ जो मन तुम भी सुनो और ये लोग भी सुने, सहन करना सीखो, दुख और सुख को बराबर समझो, समज्ञान करो, यदि कुछ आपको ऐसा आ जाता समझे भगवान की बड़ी कृपा है जो प्रभु ने हमारा सब कुछ अपहरण कर लिया धन संपत्ति इसी में मैं मरता, ये दुख आया ये भगवान की कृपा है, अतः अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल है ये प्रारब्ध के अनुसार, इसलिए किसी उस व्यक्ति को तुम अपने शत्रु मत मानो। रूपानु भक्तगण निशक्ति प्रति आस्थान स्थापन कर दिया आकर स्थान सतल महिमा का आरोप, जो रूपानु भजन करने वाले होते हैं अपने को तो रूपानु लोग कहते हैं कोई बहुत से लोग, किंतु रूप का विचार क्या है उसका अनुगत्य क्या है इस चीज को नहीं समझते, उसका विरोध करते हैं, इसलिए रूपानु होना बड़ा रूप के अनुगत होकर के भजन करना बड़ा भारी कठिन है। रूपानुभक्ति ठाकुर जी रूपाधि गुरुदेव है, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, बलदेव जी हैं, उसके ऊपर में श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी और सबसे अधिक हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, यहाँ तक ही रूप सनातन गोस्वामी को भी रूपानु कह सकते हैं किंतु डर लगता है थोड़ा सा पाने में, उनको डर नहीं किंतु हम लोगों को डर होता है, उनकी सम्मान की हानि न हो जाए, लोग समझेंगे नहीं इस चीज को, इसलिए रूपानु जब भजन यदि कुछ करते हैं और हजार लोग उनके चरणों में आ जाते हैं तो कहते हैं ये हमारे लिए वजह से नहीं आया, ये कैसे आया, इसलिए ये हमारे गुरु जी ये भगवान की कृपा से ये सब आए हैं, मैंने ये किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं प्रचार कर रहा हूँ खूब विश्व भर में, मैं मेरे जैसा और नहीं, ये अभिमान दाम्भिकता कहा जाता है, ये भक्ति बल्कि जो रूपानुग होते हैं वो कहते हैं कि रूप गोस्वामी की कृपा से महाप्रभु जी की कृपा से नित्यानंद प्रभु जी की हमारे गुरु जी की कृपा से ये सब हो रहा है, अपनी तुच्छता देखता है, जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना आप लोग हमारे विपद तारण बांधव हैं, अपने शिष्यों को कह रहे व्यास पूजा में सब उनको जो उपहार इत्यादि पुष्पांजलि चरणों में दे रहे हैं ना लोग, उन्होंने कहा कि मैं इन सबको उठा करके अपने गुरु जी के चरणों में देता हूँ, ये गुरु जी की महिमा है हमारी कुछ नहीं, मैं एक साधारण तुच्छ जीव हूँ, आप लोग हमारे विपद बांधव हैं और गुरु हैं, आप लोग को देखने से हमें कृष्ण कथा की स्मृति होती है, ये सब रूपानुग वैष्णव में है, इसलिए कभी भी ये नहीं करते कि मैंने ऐसा किया वैसा, मैं बहुत सुंदर लेखक हूँ, मैं बहुत बड़ा भारी वक्ता हूँ, मैं ऐसा कर दिया। ये रूप गोस्वामी न रख करके आकर स्थान में, आकर माने
मूल
कौन, भगवान राधा कृष्ण महाप्रभु जी नित्यानंद प्रभु हमारे गुरु, हमारे गुरु परंपरा हरि नाम ग्रहण करना और भगवान का साक्षात करना एक है। भगवान का नाम करने वाले व्यक्ति प्रभु के दर्शनों के लिए अधिक नहीं करते। नाम यदि उन्नत कोटि का तो कृष्ण अपने आप सामने आते हैं, इसलिए हरि नाम करना और भगवान का साक्षात्कार दोनों एक तात्पर्य पर है। जो लोग पांचमिशाली धर्म जाजन करते हैं, जो लोग मिश्र धर्म, पांचमिशाली मैंने
पंचोपासना
नहीं, पांचमिशाली वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, सभी ठीक है। अरे जैसे तैसे सभी लोग हम लोग भगवान के यहाँ जाएंगे, कुछ भी करो, देवताओं की उपासना, दुर्गा काली इत्यादि सब ठीक, निराकार मानो साकार मानो। जैसे आजकल ऐसे बड़े बड़े वक्ता लोग कहते हैं, कोई भी कुछ देखो, हम ये हैं भारतीय हैं हिंदू, भगवान को मानो न मानो, मूर्ति पूजा करो ना करो, वेद मानो न मानो, जो इस देश में सभी हिंदू, जिस किसी कोई भी समाज का यदि भगवान को मानता है, शास्त्रों को मानता है, तब तो वो नहीं नहीं माने 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 सब कुछ वही उन्हीं की सब ये सब पांच मिशाली, ये सब पांच मिशाली भजन करने से भगवान की सेवा वो नहीं होती है। शंकर जी की उपासना भी, उनकी भी उपासना, उनकी उपासना मनमाने रूप में सत्यनारायण की कथा कह रहा है समाज में प्रचलित है, ठीक है वो भी ठीक नहीं, उसको डिस्टर्ब मत करो, किंतु उनको समझा जा करके कृष्ण के भक्ति के लाइन में लाया जाए। कर्मियों को उसके कर्मों से भ्रष्ट मत करो।